देव को 3 दिन बाद फिर दर्द हुआ। सारी रात वीणा उसकी मालिश करती रही। एक एक करके देव ने दर्द की 4 गोलियां खा ली। तब कहीं वह सो पाया। सुबह सवेरे वीणा ने अमित से देव की दशा के विषय में बात की। वह भी चिंतित हो उठा। देव उस समय बाथरूम में था। वीणा के पास समय था अमित से बात करने का, बोली वह। अमित, उस दिन डॉक्टर गुप्ता की बात सुनकर मुझे डर लग गया। एकाएक ऐसे लगा कि जैसे वह कहना चाह रहे हो कि आगे यदि दर्द हो तो वे दूसरे किसी अस्पताल में जाएं, वहां के स्पेशलिस्ट को दिखाएं और रेडियोथेरेपी करवा लें। अमित यह सुनकर बोला, रेडियोथेरेपी? आपने उस दिन तो मुझे बताया नहीं। उसे तनिक आश्चर्य हुआ, उसकी क्या जरूरत है? वह तो बोला कि मैंने ऑपरेशन के बाद ही कहा था। वीणा ने संयत स्वर में कहा, अब भी देर नहीं हुई, देव को दर्द बार बार उठ रहा है। ऐसा क्यों कहा उसने? अपने मन के भय को कुछ उजागर किया उसने। मैं क्या जानू भाभी, उसने ऐसा क्यों कहा। हां, ऑपरेशन के बाद उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसका मुझे पूरा पता है। तब वह बात रमेश भाई या मोहन भाई से ही करता था, वे सारी बातें मुझे बता देते थे। अमित की बात में सच्चाई थी, वीणा को लगा। वीणा की आंखों से आंसू टपक पड़े। अमित भी भावुक हो गया। बोला, भाभी दुखी मत होइए, मैं तो हर किसी से आपकी मिसाल देता हूं। आपने कितनी हिम्मत की देव से शादी की हां करके। वीणा ने आंसू पोंछते हुए देखा अमित की ओर। घर में सबसे छोटा, शब्दों में कहीं उसे चतुराई ना दिखी। एकाएक कह उठी, तुम भी ऐसा ही समझते हो कि मुझे पता था? हां, विज्ञापन तो जो बनाया था वह देव ने ही लिखकर दिया था। शेष मैं इतनी बात जानता हूं कि देव ने आपसे जरूर बात की होगी, या फिर रमेश भाई ने आपके डैडी से। अमित को आश्चर्य हो रहा था वीणा के मुख से ऐसा सुनकर। वीणा तब बोली, तुम्हें प्रेम सा दर्जा दिया है, अपना छोटा भाई मानने लगी हूं। तुमसे ही कहकर मन हल्का कर रही हूं कि मुझे इस बात का कुछ पता नहीं चला। विज्ञापन में जो लिखा था वह तो मेडिकल टर्म मेरे क्या किसी भी पढ़े लिखे को समझ नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। मेरे घर वाले तो अभी भी नहीं जानते कि देव में कोई कमी है भी। सब मेरी और देव की जोड़ी को देख देख कर ही खुशी से भरे हैं। वीणा की बात सुनकर सन रह गया अमित। बोला, ये कैसे हो सकता है भाभी? मैं जो घर भर की जिम्मेवारी निभाता हूं, मैं भी इस धोखे में रहा। थोड़ा आवेश में आ गया वह। मैं आज ही रमेश भाई को पत्र लिखकर पूछूंगा, उन्होंने यह बात क्यों नहीं खोली। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, किसी से भी नहीं बोलोगे और ना ही देव से भी कुछ पूछोगे। तुम्हें मेरी कसम, इस बात को तुमने कह दिया यही काफी है। ना जाने कैसे मैं हिम्मत कर बैठी। आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है, लेकिन जो कुछ कहा है भाई मानकर इससे आगे तुम चुप रहोगे। वह बोलती जा रही थी। मम्मी डैडी आ रहे हैं, ध्यान रहे उन्हें कुछ ना पता लगे। मेरे डैडी वैसे तो बहुत शांत प्रकृति के हैं, पर जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो कुछ का कुछ कर देते हैं, ना जाने क्या निर्णय ले बैठे। मैंने सब अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। देव का मेरे जीवन में आना लिखा था, वह हो गया। अब जो होगा अच्छा ही होगा। मुझे तो लगता भी नहीं कि मैं कभी देव को नहीं जानती थी। मैं मन से देव को चाहने लगी हूं। ऐसे में तुम मेरी इतनी ही मदद कर दो कि मेरे माता पिता जैसे हंसते हुए खुशी से आए, वैसे ही वह लौटें। शेष जो होगा जैसा होगा अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित को लगी वीणा दैवी रूप, एक शक्ति, इस तेज रफ्तार से चलती जिंदगी में अनूठी औरत, जिसे शादी के बाद पता लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन खुश है। अपनी खातिर ही नहीं, अपने परिवार की भी खातिर, जिसने कितनी खुशी से सब अपना लिया है। अभी 10 मिनट पहले तक उसे जो लग रहा था वह तो बिल्कुल असत्य था। उसके मन में जो भाव थे वह और ऊपर उठा गए वीणा के स्वरूप को। बरबस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बोला वह, मैं भी आपका गुनाहगार हूं, मुझे जो चाहे सजा दे दो। कैसी बात करते हो अमित, भाई समझा तभी मन की बात कह रही हूं। ऐसा कुछ भी मत सोचो, मुझे तुमसे क्या किसी से भी गिला नहीं है। वीणा की बात सुनकर अमित नतमस्तक हो गया। बाथरूम से पानी चलने की आवाज बंद हो गई थी। देव के निकल आने में चंद ही मिनट थे, तब वीणा ने बात समाप्त करते हुए कहा, ध्यान रखना जो तुम्हें कहा है। और यह कहकर वह रसोई घर की ओर बढ़ गई और अमित अपने कमरे में चला गया। देव को देवर भाभी के बीच हुए वार्तालाप का कुछ पता ना चला। अपने माता पिता से मिलकर वीणा का मन प्रसन्न हो उठा। प्यार से मां की गोदी में सिर रखकर आंखें बंद कर ली उसने। पिता पन्नालाल मां बेटी का प्रेम देखकर मुस्कुरा रहे थे। मां से मिलकर वीणा को एकाएक लगने लगा था कि जैसे जीवन में उसके देव से ऊपर भी बहुत बड़ा सहारा है। मां का सहारा, मां जिसे वह अपने दिल का सब हाल बता सकती थी, मां जो उसके मन की भाषा को बड़ी सरलता से पढ़ सकती थी। मां निर्मला को लग रहा था जैसे वीणा बहुत शांति पा रही है उससे मिलने के बाद, जैसे मन में उसके ढेर सी बातें हैं जो वह उससे कहना चाहती है। ऐसे में ही जब वे दोनों कमरे में अकेली रह गई, तब पूछा निर्मला ने, वीणा तू खुश है ना? हां मां बहुत खुश हूं, वीणा ने आंखें बंद किए हुए कहा। बहुत खुश हूं, और उसके शांत चेहरे पर बंद आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू खुशी के थे या कि किसी गम की पहचान करवा रहे थे, एकाएक निर्मला ना समझ पाई। बोली, अरे आंसू क्यों बहाती हो? मुझसे मिलने की इतनी चाह थी तो चली आती देहरादून, मैं दूर तो नहीं इतनी। उसकी आंखें पोंछते हुए बोली, शादी के बाद रही भी कितना है तू मेरे पास, 2 ही दिन। अब नागपुर से आऊंगी तो मेरे साथ चलना, 10-15 दिन मेरे पास रहना, देव आकर तुझे ले जाएंगे। आंखें बंद किए वीणा ने तब कहा, तुम लौट आओ मां नागपुर से, मेरे पास रहना कुछ दिन, मेरे लिए तो देव को छोड़कर जाना मुश्किल है। अरे क्यों मुश्किल है? मां को वीणा का यूं कहना अच्छा भी लगा। मन में सोचा, कितनी अच्छी बात है, पति पत्नी में इतना प्यार हो गया है कि अब एक दूसरे के बिना कहीं रहना नहीं चाहते। वैसे ही भाव लिए बोली, अच्छा लगा सुनकर, पर बेटी मां को भी तो तेरी याद आती है, देव जी से मैं कहूंगी, कुछ दिन जरूर रहने को चलना मेरे साथ। वीणा को लगा वह भावुक हो उठेगी, मन की बात कहीं शब्द बनकर मुख से ना निकल जाए। एकाएक उठकर बैठ गई, आंखें साफ करते हुए बोली, चलो ना मां, आप नागपुर से पहले अच्छी खबर ले आओ। मेरा क्या है, जब मन आएगा मैं आ जाऊंगी, और रजनी की शादी की तारीख पक्की हो जाएगी तब तो मैं शादी से पहले आकर साथ ही तो रहूंगी आपके। बात वहीं रुक गई। देव कॉलेज से लौट आया था। मां निर्मला व पिता पन्नालाल को उसने चरण स्पर्श किया और उनका हालचाल पूछने लगा। बातों ही बातों में निर्मला को लगा कि देव जैसे बेचैन है। पूछ उठी वह, तबीयत ठीक है ना देव जी, कुछ बेचैन लग रहे हैं। देव तब हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था, उसे दबाते हुए बोला, नहीं बस थक गया हूं, इसीलिए थोड़ा सिर में दर्द महसूस हो रहा है। मां को सच लगी उसकी बात, बोली, चलो बेटा आप आराम कर लो, मैं थोड़ी देर बहन जी के पास बैठती हूं, वैसे भी शाम को तो हमारी गाड़ी है। मां ने पति पत्नी को अकेला छोड़ दिया। वीणा तब बोली, दर्द हो रहा है क्या? हां हल्का सा, कॉलेज में ही गोली खा ली थी। देव ने तब कहा, आंखें बोझिल हो रही थी उसकी, आप आराम कर लीजिए, मैं खाना तैयार करती हूं, शाम तक आराम आ जाएगा। ठीक रहेंगे तो मम्मी डैडी को स्टेशन छोड़ने चलेंगे। वीणा तब कमरे से बाहर जाने को हुई। देव ने तब पूछा, कुछ बात तो नहीं हुई मम्मी डैडी से? मन का चोर उजागर किया उसने, जैसे इसी बात की परेशानी थी, इसीलिए ही बेचैन था वह। कैसी बात करते हैं आप, चलिए आराम कीजिए। और वीणा बाहर निकल गई। देव का आधा दर्द तो उसे ठीक होता महसूस हुआ। नागपुर से लौटकर मां निर्मला ने अच्छी खबर दी, रजनी की शादी वह पक्की कर आए थे। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला था, लड़के वाले देहरादून आने को मान गए थे। लड़के वालों में है ही कौन, लड़का ही अपने घर का करता धरता है। बड़े भैया तो उसके रेलवे में चीफ इंजीनियर हैं, अपनी नौकरी में मस्त रहते हैं। छोटे 2 भाई और हैं, वे भी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मां विधवा है, वह बेचारी तो यही कहती रही कि पत्रों का जवाब देने के लिए वह अपने बड़े बेटे को लिखती थी, लेकिन उसे उनकी चिंता नहीं। तब हिम्मत करके लड़के ने स्वयं लिखा। बात कुछ भी नहीं थी, वे यूं ही चुप बैठे थे। मां ने वीणा को विस्तार से सब बात बताते हुए कहा, लड़के के बारे में सब देख लिया ना मां? वीणा ने तब पूछा, भले लोग हैं, इससे अधिक और क्या देख समझ सकते हैं हम? विश्वास तो करना ही पड़ता है, लड़की की शादी तो जुआ है बेटी, गृहस्थी ठीक चलती रहे यही कामना कर सकते हैं लड़की वाले, और जो शादी के बाद होता है वह सब लड़की का अपना भाग्य ही होता है। मां निर्मला ने सहज भाव से कहा वीणा से, वे क्या जाने वीणा की बात में छिपे मर्म को। हां मां तुम ठीक कहती हो, शादी के बाद जो कुछ भी होता है वह लड़की के भाग्य में लिखा होता है। शादी एक ऐसा बंधन है हमारे समाज का, जिसे जितना निभाना चाहो जैसे निभाना चाहो वैसे ही निभ जाता है। कुछ बातें तो जानकर भी नहीं देख पाते हम, कुछ बातें समझकर भी समझ नहीं पाते हम। बात बात पर शक तो नहीं किया जा सकता, फिर भी रजनी का भाग्य बलवान होगा यही कामना है मेरी। हां बेटी, रजनी का भाग्य अपनी दोनों बड़ी बहनों जैसा ही होगा। सुनीता खुश है अपने पति के साथ, तुम खुश हो अपने पति के साथ, हमारा जीवन तो सफल हो गया। रजनी के बाद बस प्रिया और गीता के हाथ पीले हो जाएं जल्दी से, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। मां की आंखों में छिपी खुशी को वीणा ने सहारा दिया। वह उसकी आंखों की चमक को कम नहीं और अधिक बढ़ते हुए देखना चाह रही थी। बोली, प्रिया के लिए मां, मुझे अमित बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लड़का है, अपने परिवार में सबसे अलग, सबकी भावनाओं की चाह रहती है उसे, मेरा तो बहुत ध्यान रखता है। अमित के प्रति अपनी भावनाओं को वह मां के सम्मुख व्यक्त कर रही थी और कह बैठी, मैं भी यहां खुश हूं और अमित तो अपनी पत्नी को पलकों पर बिठा कर रखेगा। मां को जैसे वीणा की बात बहुत अच्छी लगी। बोली, मैं प्रिया से पूछूंगी, डैडी से भी बात करूंगी तुम्हारे। जैसे कुछ याद आया उन्हें, बोली, प्रिया के जन्मदिन पर अमित का कार्ड भी आया था, वह भी उसे पाकर खुश हुई थी। वीणा को यह खबर सुनकर आश्चर्य हुआ। अमित ने अपने मन की बात उससे छिपाकर रखी थी, उसे अमित पर और अधिक स्नेह उमड़ आया। प्रिया के लिए उसे अमित में कोई कमी जो नहीं लग रही थी। उनकी बात वहीं रुक गई। शाम अमित अपने काम से लौटकर जब आया तो वीणा ने उसे छेड़ा, अमित, प्रिया ने तुम्हारी शिकायत की है। एकाएक प्रिया का नाम सुनकर वह हड़बड़ा गया। बोला, मेरी शिकायत? मैंने क्या किया है? यह तो तुम ही जानो, मुझसे तो बातों ही बातों में पूछा था उसका जन्मदिन, और फिर तुमने क्या किया, मैं क्या जानू? मुस्कुरा रही थी वीणा। मैंने क्या किया? सोचने का नाटक किया अमित ने। मैंने कुछ नहीं किया, बस आपके ग्रीटिंग कार्ड के साथ अपना भी एक कार्ड भेज दिया। मुस्कुराने लगा वह यह कहकर। बस यही शिकायत की, उसके बाद अमित ने उसकी कोई खबर नहीं ली। वीणा की बात सुनकर अमित खुश हो गया। ऐसी बात है भाभी, जानती हो मैं उसके नाम रोज कुछ ना कुछ लिखता हूं अपनी डायरी में। अमित जो कितने दिनों से हिम्मत कर रहा था अपने मन की बात कहने की, वह इतनी सरलता से बता पाएगा वीणा को, इसका तो उसे अंदेशा भी ना था। वह कह रहा था, अब मुझे लगता है उसे पत्र लिखना चाहिए। ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद से निर्णय लो। वीणा के चेहरे पर स्नेह भरे भाव थे। अमित को अपनी मुंह मांगी मुराद पूरी होती दिख रही थी।